पृष्ठ संख्या 558। बंधुआ श्रम प्रणाली की समाप्ति हेतु उपाय, मेजर्स फॉर एबोलिशन ऑफ द बॉन्डेड लेबर सिस्टम। बंधुआ श्रम की क्रूर प्रणाली को समाप्त करने हेतु उपाय ब्रिटिश शासन के प्रारंभ से ही किए जा रहे हैं। समय समय पर आयोजित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों यथा श्रम सम्मेलन 1930, सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा 1948, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 1956 में आयोजित सम्मेलन द्वारा दासता, दास व्यापार एवं समकक्ष संस्थाओं एवं अभ्यासों वाले अंगीकृत पूरक उपसंधि तथा बाह्य श्रम समाप्ति सम्मेलन 1957 के सरकारों से मानवता के विरुद्ध इस अपराध को आवश्यक अधिनियमों द्वारा समाप्त करने हेतु आवश्यक पग उठाने का आग्रह किया है। भारतीय संविधान की धारा 23 में इसके लिए विशिष्ट व्यवस्था है। संविधान के अंगीकरण पश्चात राज्य सरकारों ने इस विषय पर अधिनियम पारित किए हैं, यथा आंध्र प्रदेश अनुसूचित जनजातियां साहूकार नियमन 1960, उड़ीसा ऋण बंधुआपन समाप्ति नियम 1963, लक्षद्वीप मिनी कोय एवं अभिन्न वृद्धि द्वीप ऋण समाप्ति एवं ऋण अनुदान नियम 1964, असम ग्रामीण ऋणग्रस्तता राहत कानून 1975, उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषक श्रम ऋण राहत कानून 1975, उड़ीसा भूदान श्रम नियंत्रण एवं नियमन कानून 1975, अंतरराज्य प्रवासी श्रमिक रोजगार एवं सेवा शर्त नियमन तथा फुटकर व्यवस्था कानून 1979। भारतीय दंड संहिता की धारा 371 में व्यवस्था है कि जो कोई किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विपरीत गैर कानूनी ढंग से श्रम करने पर विवश करता है, ऐसा व्यक्ति 1 वर्ष की कैद अथवा जुर्माने अथवा दोनों का भागी होगा। देश भर में बंधुआ श्रम की विधिक समाप्ति की दिशा में गंभीर प्रयास 1975 में 20 सूत्री प्रोग्राम की घोषणा उपरांत की आरंभ हुए। इससे स्पष्ट कहा गया है कि बंधुआ श्रम का अभ्यास क्रूरतापूर्ण है एवं इसे समाप्त किया जाएगा। ऐसे सभी समझौते अथवा अन्य प्रबंध जिसके अंतर्गत ऐसे बंधुआ श्रमिकों की सेवाएं ली जाती हैं, अवैधानिक घोषित किए जाएंगे। इस घोषणा के अनुसरण में बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अध्यादेश 4 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया, जिसके द्वारा बंधुआ श्रम को तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। यह अध्यादेश 2 फरवरी 1976 को कानून बन गया। संशोधित 20 सूत्री प्रोग्राम 1986 में उल्लिखित है कि रोमन का नंबर 1 बंधुआ श्रम को समाप्त करने वाले कानूनों का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन एवं बंधुआ श्रम प्रोग्राम में स्वयंसेवी एजेंसियों की संलग्नता, बंधुआ श्रमिकों की पहचान, उनकी मुक्ति एवं उनके पुनर्वास का दायित्व राज्य सरकारों का है, जो बंधुआ श्रम प्रणाली कानून 1975-76 की कार्यान्वयन प्राधिकारी है। 12 राज्यों से बंधुआ श्रम प्रणाली की व्यवस्था के बारे में सूचना प्राप्त हुई है। ये राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल एवं गुजरात राज्य सरकारों के कथनानुसार उनके राज्यों से बंधुआ श्रम व्यवस्था को पूर्ण समाप्त कर दिया गया है तथा अन्य कोई बंधुआ श्रमिक अब नहीं पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 1987-88 के अंत तक बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास का कोई मामला अवशेष नहीं था, परंतु 30 नवंबर 1988 तक उन्होंने 901 बंधुआ श्रमिकों की पहचान की, जिनमें से 417 को पुनर्वासित कर दिया गया था। राज्य सरकारों की उत्तरोत्तर सूचनाओं के अनुसार 30 नवंबर 1988 की स्थिति अनुसार कुल पहचान किए गए एवं मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की कुल संख्या 236,868 थी, जिनमें से 203,035 को पुनर्वासित कर दिया गया था। बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास में राज्य सरकारों के प्रयासों के पूरक रूप में श्रम मंत्रालय ने 1978-79 में केंद्रीय प्रायोजित स्कीम आरंभ की है, जिसके अंतर्गत बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु 50:50 के आधार पर मैच्छिक अनुदान दिया जाता है। पहले प्रति 1,000 बंधुआ श्रमिक सहायता की राशि 4,000 थी, जो 1 फरवरी 1986 को 6,250 रुपये कर दी गई। पुनर्वास योजना भूमि आधारित, पशुपालन आधारित अथवा शिल्प कौशल आधारित लाभोक्ता को रुचिकर उनके कौशल एवं वरीयता के अनुसार हो सकती है। भूमि आधारित योजना में भूमि आवंटन, हल, बैल, बीज, खाद आदि प्रदान करना सम्मिलित है। पशुपालन आधारित सेवा के उत्पाद, परिसंपत्ति एवं बाजार में संयोजन सम्मिलित है। कौशल शल्य आधारित स्कीमों में कौशल शिल्प की पहचान, कच्चे माल की आपूर्ति, कार्यकारी पूंजी छप्पर, उपकरण एवं बाजार के साथ संयोजन सम्मिलित है। बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की गति को तेज करने हेतु राज्य सरकारों के अधिकार दिए गए हैं कि ये पुनर्वास स्कीम को स्वीकृत करने की शक्ति जिला कलेक्टरों, मंडल आयुक्तों को जिला स्तर पर जांच समितियां की स्थापना करके दे दी गई हैं। राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर मुख्य सचिव अथवा किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में प्रबोधन समिति की स्थापना करने के बारे में भी आदेश दिए गए हैं। यह समिति प्रत्येक 3 मास अपनी बैठक करेगी, जिनमें बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास प्रोग्राम की गति की समीक्षा एवं इसका प्रबोधन किया जाएगा। यह उपयुक्त सिफारिशें भी करेगी। महानिदेशक श्रम मंत्रालय अथवा उसका प्रतिनिधि इस समिति का सदस्य होगा। श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी राज्यों का दौरा करते हैं, यह जानने के लिए कि राज्य सरकारों ने बंधुआ श्रमिकों की पहचान एवं पुनर्वास हेतु क्या पग उठाए हैं। इन समीक्षाओं के दौरान देखी गई न्यूनताओं राज्य सरकार के ध्यान में ला दिया जाता है। श्रम मंत्रालय भी इन समीक्षाओं के आधार पर आवश्यक हिदायतें एवं मार्गदिशाएं राज्य सरकारों को भेजती हैं, ताकि प्रोग्राम को प्रभावी तौर पर क्रियान्वित किया जा सके। बीस सूत्री प्रोग्राम 1986 में बंधुआ श्रमिकों की पहचान एवं पुनर्वास में स्वयंसेवी संगठनों की सहायता अनुदान की व्यवस्था है। तदर्थ 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1 करोड़ रुपए तथा वार्षिक योजना 1988-89 के लिए 5 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। पृष्ठ संख्या 560। ठेका श्रम, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ठेका श्रम नियमन एवं समाप्ति कानून 1970 ठेके पर कार्य करने वाले श्रमिकों के रोजगार को नियमित करने तथा कुछ एक परिस्थितियों में इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। इस कानून में ठेके पर कार्य करने वाले श्रमिकों के वेतन, भुगतान, कार्य दशाओं के नियमन एवं उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित प्रावधान हैं। उपयुक्त सरकार, केंद्रीय बोर्ड अथवा राज्य बोर्ड जैसा भी हो, से परामर्श करने किसी भी प्रतिष्ठान में किसी प्रक्रिया, क्रिया अथवा अन्य कार्य में ठेके पर श्रमिक के रोजगार पर कानून में निर्दिष्ट मापदंड को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगा सकती है, जो सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा। केंद्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड की सिफारिशों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार ने निम्नलिखित प्रकार के कार्यों में ठेके पर श्रमिकों के रोजगार को प्रतिबंधित किया है। पृष्ठ संख्या 561। क्रम संख्या, उद्योग का नाम, कार्य क्रिया का स्वरूप, समाप्त की तिथि। नंबर 1, कोयला खान। रोमन का नंबर 1, कोयला उठाना। रोमन का नंबर 2, चढ़ाना एवं उतारना। रोमन का नंबर 3 अतिभार कम करना एवं भूमि कटान, रोमन का नंबर 4 भूमि के नीचे पत्थर काटने, पत्थर गति की संचालन। समाप्ति की तिथि 1/2/1975। परंतु यह अधिसूचना रोमन का नंबर 1 उत्तरी पूर्वी कोयला क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी, जहां अत्यधिक वर्षा के कारण वर्ष में कुछ एक महीनों तक ही कार्य किया जा सकता है। रोमन का नंबर तो पेंच घाटी एवं कार्य तभी हो सकता है जब जलस्तर कम हो गया हो। रोमन का नंबर 3 बिजली फेल हो गई हो, मशीन काम कर ना रही हो, अथवा रेलवे द्वारा डिब्बों की अनियमित आपूर्ति की दशा में कोयला उतारना। रोमन का नंबर 4 पत्थरों की गति, दोषों को काटना जिनका पूर्व पता नहीं लगाया जा सकता है, जो अल्पकाल अर्थात 6 मास तक के लिए हैं। नंबर 2 भवन, केंद्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों में झाड़ू लगाना, सफाई करना एवं चौकीदारी। 1/3/1977। नंबर 3 खनिज लोहा खान, रोमन का नंबर 1 अतिभार उतारना, रोमन का नंबर 2 छेदकरण एवं विस्फोट करना। 10/5/1980 रोमन का नंबर 3 गंदगी साफ करना मशीनों से, रोमन का नंबर 4 डिब्बों में समतलीकरण करना, रोमन का नंबर 5 तृतीय खनिज प्रक्रियाएं। 10/5/1980 नंबर 4 चूना पत्थर डोलोमाइट एवं मैग्नीज, रोमन का नंबर 1 अतिभार उतारना, रोमन का नंबर 2 छेद करना एवं विस्फोट करना। नंबर 5 कोयला ढोना, रोमन का नंबर 1 कच्चा कोयला को उतारना, रोमन का नंबर 2 मैग्नेटाइट को चार्ज करना, रोमन का नंबर 3 प्लांट की सफाई। 25/7/1987 क्रोमाइट खान, रोमन का नंबर 1 अतिभार खुदाई एवं हटाना, रोमन का नंबर 2 छेद करना एवं विस्फोट करना, रोमन का नंबर 3 खनिज निकालना, रोमन का नंबर 4 अतिभार एवं खनिज को गोदामों स्थानों पर यातायात। 8/12/1984 नंबर 7 मैग्नेटाइट खान, रोमन का नंबर 1 अतिभार हटाना, रोमन का नंबर 2 छेद करना एवं विस्फोट करना, रोमन का नंबर 3 खनिज निकालना। 8/12/1984 नंबर 8 अमुक खान, रोमन का नंबर 1 खनिज निकालना, रोमन का नंबर 2 छेद करना एवं विस्फोट करना। 8/12/1984 रोमन का नंबर 3 खानों का पानी निकालना, रोमन का नंबर 4 गंदगी हटाना, रोमन का नंबर 5 अमुक की सफाई करना। नंबर 9 जिप्सम खान, रोमन का नंबर 1 अतिभार हटाना, रोमन का नंबर 2 खान खोदना खनिज हटाना। 8/12/1984 नंबर 10 अग्नि मिट्टी खान, रोमन का नंबर 1 अतिभार हटाना, रोमन का नंबर 2 अग्नि मिट्टी को निकालना एवं इकट्ठा करना, रोमन का नंबर 3 लोहा एवं यातायात। 28/12/1987 नंबर 11 रेलवे, रेलवे की कारखानों, गृहों एवं रसोई घर की सफाई। 28/7/1987 ऐसे श्रमिकों जिन्हें ठेकेदार द्वारा एक राज्य में भर्ती किया जाता है परंतु अन्य किसी राज्य में सेवा करने हेतु भेज दिया जाता है, के हितों की सुरक्षार्थ एवं ठेकेदार द्वारा शोषण से बचाने हेतु अंतर राज्य प्रवासी कानून, रोजगार एवं सेवा शर्ते नियमन कानून 1979 पारित किया गया। यह कानून 2 अक्टूबर 1980 को लागू हो गया। इसमें श्रमिकों के लिए मूल आवश्यकताओं यथा आवास, भोजन, वस्त्रों एवं चिकित्सा सुविधाओं की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कानून को केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में लागू किया जाना है। भवन एवं विनिर्माण उद्योग, बिल्डिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। भवन एवं निर्माण उद्योग लगभग 20 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। उनमें से अनेक ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाए जाते हैं, जबकि अनेक आकस्मिक आधार पर लगाए जाते हैं, परंतु इन क्रमिकों के स्वास्थ्य सुधार एवं सेवा शर्त की नियमित करने के बारे में कोई कानून नहीं है। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक रोजगार एवं सेवा शर्त नियमन विधेयक 1988 राज्यसभा में 5 सितंबर 1988 को प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक में निम्नलिखित व्यवस्थाएं थी। रोमन का नंबर एक, प्रत्येक प्रतिष्ठान जो पहले 12 महीनों में किसी दिन किसी भवन अथवा निर्माण कार्य में 50 अथवा अधिक श्रमिक काम पर लगाता है अथवा लगाए थे पर कानून लागू होगा। रोमन का नंबर दो, केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों को सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देना, जो कानून के प्रशासन से उत्पन्न मामलों जो उन्हें भेज दिए गए हैं पर परामर्श देंगे। ऐसे सलाहकार बोर्ड नियोक्ताओं, श्रमिकों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, दुर्घटना बीमा संस्थाओं तथा अन्य किसी वर्ग विशेष जिसे सरकार की सम्मति में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, प्रतिनिधियों को बोर्ड का सदस्य बनाने के लिए भी सलाह देगा। रोमन का नंबर तीन, एक अथवा अधिक विशेषज्ञ समिति की स्थापना जो सरकार को प्रस्तावित अधिनियम के अधीन नियमों के विशेषज्ञ समिति की स्थापना जो सरकार को प्रस्तावित अधिनियम के अधीन नियमों के निर्माण के बारे में सलाह देगी। रोमन का नंबर चार, ऐसे प्रतिष्ठानों का पंजीकरण करना जो भवन अथवा निर्माण कार्य करते हैं। रोमन का नंबर पाँच, उपयुक्त सरकार को निर्माण कार्य दिवस को कार्य समय, विश्राम दिवस, विश्राम वाले दिन, मजदूरी भुगतान, अतिरिक्त समय भत्ते एवं अन्य कल्याणकारी सुविधाएं यथा पेयजल, शौचालयों, केच, प्रथम चिकित्सा एवं कैंटीन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत करें। रोमन का नंबर छः, निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध करना एवं तदर्थ सुरक्षा समितियों एवं सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति। रोमन का नंबर सात, सुरक्षा उपायों के लिए आदर्श नियम बनाने हेतु सरकार को अधिकृत करना। रोमन का नंबर आठ, उपयुक्त निरीक्षण स्टाफ जिसमें केंद्रीय स्तर पर महानिदेशक तथा राज्य स्तर पर भवन एवं निर्माण निरीक्षण का मुख्य निरीक्षक होगा की नियुक्ति, ऐसी व्यवस्था करना जो प्रस्तावित अधिनियम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। रोमन का नंबर नौ, प्रस्तावित अधिनियम के उपबंधों के परिचालन एवं भवन श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु नियोक्ताओं के दायित्व के बारे में विशेष प्रावधान करना एवं रोमन का नंबर दस, प्रस्तावित कानून की धाराओं का उल्लंघन करने पर कठोर दंड की व्यवस्था करना। पृष्ठ संख्या 563, महिला एवं बाल श्रम, वुमेन एंड चाइल्ड लेबर। महिला एवं बाल श्रमिक श्रम शक्ति का सबसे आलाभान्वित एवं शोषित वर्ग है। महिला एवं बाल श्रमिकों का अधिकांश भाग असंगठित एवं कम वेतन एवं कौशल के कम स्तरों पर कार्य करता है। महिला एवं बाल श्रमिकों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने हेतु श्रम मंत्रालय दो विशेष कोष्ठ, एक महिला श्रमिकों तथा दूसरा बाल श्रमिकों के लिए स्थापित किए गए हैं। नंबर एक, महिला श्रमिक, वुमेन लेबर। महिलाओं की कार्य स्थिति को सुधारने, उनके वेतन को बढ़ाने हेतु उनकी सौदेबाजी की शक्ति को सशक्त बनाने तथा उन्हें बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करने हेतु महिला कोष्ठ महिला श्रम से संबंधित नीतियों का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस नीति के भाग रूप में मंत्रालय ने महिला श्रमिकों के लिए कुछ एक कानून पारित किए हैं, जिनमें प्रमुख समान वेतन कानून 1976 है, जिसके अंतर्गत समान कार्य अथवा समान स्वरूप के कार्य के लिए पुरुषों एवं महिलाओं को समान वेतन भुगतान एवं लिंग के आधार पर रोजगार संबंधी मामलों में किसी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए व्यवस्था है। केंद्रीय स्तर पर महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने हेतु सरकार को परामर्श देने के लिए कानून के अंतर्गत एक समिति की स्थापना की गई है। ऐसी समितियां राज्य सरकारों, संघ प्रदेशों द्वारा भी स्थापित की गई हैं। 1976 के अधीन महिला श्रमिकों के दावों एवं उनकी शिकायतों को सुनने एवं उनका निर्णय करने के लिए उपयुक्त प्राधिकरणों की भी नियुक्ति की है। समान वेतन संशोधन कानून 1987 ने प्रारंभिक कानून के कुछ दोषों को दूर कर कानून के अधीन दंड को अधिक कठोर बना दिया है। महिलाओं की कार्य दशाओं को उन्नत करने एवं उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु महिला कोष्ठ स्वयंसेवी संगठनों की कार्य अभिमुखी योजनाएं चलाने हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। जहां 1988-89 में निम्नलिखित चार परियोजनाओं को सहायता दी गई थी। पृष्ठ संख्या 564। नंबर एक, इंदौर नगर में बीड़ी श्रमिकों को संगठित करने पर परियोजना SEWA अहमदाबाद द्वारा चलाई जा रही है। श्रमिक घरेलू को प्रशिक्षण एवं नई दिल्ली में उपयुक्त नियोक्ता तलाश करने हेतु स्थानापन्न सेवा प्रदान करना, यह परियोजना निर्मल सेवा समिति नई दिल्ली द्वारा चलाई जा रही है। कौशल प्रशिक्षण एवं मद्रास के निर्माण श्रमिकों को संगठित करना, यह परियोजना तमिलनाडु निर्माण वर्क्स यूनियन मद्रास द्वारा चलाई जा रही है। नंबर चार, मेहरौली नई दिल्ली में निर्धन स्त्रियों के कल्याण हेतु परिवर्तन प्रोग्राम, यह प्रोग्राम सामाजिक अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली द्वारा चलाया जा रहा है। बिहार में रोजगार के माध्यम से महिलाओं को संगठित करना, यह परियोजना महिला विकास अध्ययन केंद्र बिहार द्वारा चलाई जा रही है। बाल श्रम चाइल्ड लेबर। बाल श्रम यद्यपि अवांछनीय है, सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण विभिन्न रोजगारों में वर्तमान है। अतएव बाल श्रम को पूर्णतया सभी व्यवसायों में प्रतिबंधित करना यह समय संभव नहीं है। सरकार की नीति 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खानों, फैक्ट्रियों एवं अन्य खतरनाक रोजगारों में लगाने पर संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसरण में प्रतिबंध लगाना है एवं गैर खतरनाक रोजगार में उनकी कार्य दशाओं को नियमित करना है। बाल श्रम प्रतिबंध एवं नियमन कानून 1986 में यही उद्देश्य थे। इस कानून की धारा 5 के अंतर्गत सरकार ने एक बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति की स्थापना की है, जो प्रतिबंधित रोजगारों की सूची में अन्य व्यवसाय प्रक्रियाओं को सम्मिलित करने के बारे में परामर्श देगी। समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट अगस्त 1988 में सरकार को निम्नलिखित व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश थी। व्यवसाय पटाखे एवं आतिशबाजी का सामान बेचने के लिए अस्थायी आज्ञा पत्र प्राप्त दुकानदारों में रोजगार। प्रक्रियाएं, स्लेट पेंसिलों का निर्माण, इनकी पैकिंग भी, अकीक से निर्मित वस्तुएं, उत्पादों का निर्माण, विषैले पदार्थ एवं खनिज पदार्थों से यथा शीशा, पारा, मैग्नीज, क्रोमियम, कैडमियम, बेंजीन, कीटनाशक एवं एबस्टोस प्रयोग करने वाले निर्माण प्रक्रियाएं। सरकार ने समिति की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मंत्रालय का बाल श्रम सेल बच्चों की कार्य दशाओं को सुधारने संबंधी स्कीमों एवं प्रोग्रामों के निर्माण, क्रियान्वयन एवं समन्वय में संलग्न है। 1988-89 के दौरान इस सेल ने बाल श्रम के क्षेत्र में 7 स्वयंसेवी संगठनों की कार्यरत बच्चों के कल्याण, पूरक पोषाहार एवं बाल देखभाल एवं व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण हेतु नई परियोजनाएं, प्रोग्रामों को यथा वर्तमान की क्रियान्वित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की। सेल द्वारा वित्तीय परियोजनाएं हैं। पृष्ठ संख्या 565। रोमन का नंबर एक औरंगाबाद महाराष्ट्र के निकट ग्रामीण एवं कृषक व्यवसायों में रोजगाररत बच्चों के लिए पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शिक्षण तथा राहत केंद्र। यह परियोजना ग्रामीण श्रमिक संस्थान औरंगाबाद द्वारा चलाई जाती है। रोमन का नंबर दो, कलकत्ता में स्वचालित वाहन, कार्यशालाओं, चाय दुकानों, पान दुकानों आदि तथा घरेलू नौकरों के रूप में कार्यरत नगरीय बच्चों को पोषाहार, स्वास्थ्य देखभाल, औपचारिक एवं गैर औपचारिक शिक्षा प्रदान हेतु परियोजना। ये केंद्र मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक अनुसंधान संस्थान कलकत्ता द्वारा परिवार एवं अवकाश दिवसों पर चलाए जाते हैं। रोमन का नंबर तीन, अहमदाबाद में बाल श्रमिक के पुनर्वास हेतु कार्य परियोजना। ऐसे केंद्र हथकरघा, बुनाई, सिलाई, बिजली के तारे लगाना आदि में प्रशिक्षण देने हेतु खोले गए हैं। यह परियोजना स्वरोजगाररत महिला समिति अहमदाबाद द्वारा चलाई जा रही है। रोमन का नंबर चार, बंगलौर में बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु तथा राजेंद्र चीथड़े चयनकर्ता परियोजना। यह परियोजना कर्नाटक बाल कल्याण राज्य परिषद द्वारा चलाई जा रही है। यह परियोजना बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करती है एवं उन्हें ऐसे व्यवसायों में प्रशिक्षण देती है जिनके द्वारा वे वयस्क होने पर उचित आय अर्जित कर लेंगे। यह बच्चों के नैतिक शिक्षा भी देती है तथा उन्हें खतरनाक व्यवसायों से अलग करने का प्रयास करती है। रोमन का नंबर पाँच, मिर्जापुर भदोही के दरी उद्योग से हटाए गए बाल श्रमिकों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, पोषाहार आदि प्रदान करना। यह केंद्र सघन क्षेत्र विकास समिति सेवापुरी बनारस द्वारा स्थापित किया गया है। रोमन का नंबर छः, ग्रामीण व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा ओरिएंटेशन शिविर हैदराबाद में आयोजित करना। यह परियोजना श्रमिक विद्यापीठ हैदराबाद द्वारा चलाई जाती है। रोमन का नंबर सात, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में कार्यरत बच्चों हेतु केंद्र। यह भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली द्वारा स्थापित किया गया है। सरकार ने अगस्त 1987 को राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की घोषणा की। यह अनुभव करते हुए कि केवल मात्र कानूनों द्वारा ही बाल श्रम की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, इस कार्य योजना आधारित परियोजना के अंतर्गत अब तक 8 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से निम्नलिखित 3 वर्ष 1988 में आरंभ की गई थी। रोमन का नंबर एक, जयपुर राजस्थान में बहुमूल्य पत्थर पालिश उद्योग में कार्यरत बच्चों के कल्याण हेतु परियोजना। रोमन का नंबर दो, मडासौर मध्य प्रदेश में स्लेट पेंसिल निर्माण उद्योग में कार्यरत बच्चों के कल्याण हेतु परियोजना। रोमन का नंबर तीन, भरकापुर मध्य प्रदेश में स्लेट उद्योग में कार्यरत बच्चों के कल्याण हेतु परियोजना। पृष्ठ संख्या 566, शिवाकाशी तमिलनाडु में माचिस एवं आतिशबाजी उद्योग में कार्यरत बच्चों को कल्याण योजना जो अप्रैल 1986 अर्थात नीति निर्माण से पूर्व से क्रियान्वित है, राष्ट्रीय बाल नीति के अनुरूप संशोधन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ताला उद्योग अलीगढ़, बर्तन निर्माण मुरादाबाद, मिर्जापुर भदोही में दरी उद्योग तथा फिरोजाबाद चूड़ी निर्माण उद्योग सभी उत्तर प्रदेश में कार्यरत बच्चों के कल्याण हेतु 4 अन्य परियोजनाओं के अंतिम रूप दिया जा चुका है एवं मंत्रालय द्वारा हाल ही में स्वीकृत प्रदान की गई है। असंगठित श्रम द अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। दूसरे विश्वयुद्ध के पश्चात औद्योगिक विकास असंगठित सेक्टर उद्योगों में रोजगाररत श्रमिकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 1980 में उनकी अनुमानित संख्या 70.04 लाख थी। असंगठित श्रम से तात्पर्य उन श्रमिकों से है जो असंगठित अथवा अनियमित उद्योगों में कार्य करते हैं एवं जो अपने सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्वयं को संगठित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका रोजगार आकस्मिक प्रकृति का है। उनमें निरक्षरता एवं अज्ञानता है। जिन प्रतिष्ठानों में वह कार्यरत हैं उनका कार्यकारी निवेश अति निम्न है एवं उनका आकार भी छोटा है। उनके प्रतिष्ठान केंद्रीकृत न होकर छितरे हुए हैं तथा उनके नियोक्ताओं अथवा सामूहिक की शक्ति श्रेष्ठ है। असंगठित श्रमिकों की वास्तविक संख्या उपलब्ध नहीं है, परंतु अनुमानतः उनकी संख्या 2 करोड़ से अधिक होगी। इनमें से आधे से अधिक 55% अन्य कृषकों के खेतों में कृषक मजदूर हैं। 17% तक निर्माण, गैर उद्योगी प्रतिष्ठानों एवं घरेलू उद्योग में स्वरोजगाररत, 13% सेवाओं, छोटे प्रतिष्ठानों द्वारा वैयक्तिक सेवाएं एवं घर से बाहर स्वरोजगाररत अथवा व्यक्तियों द्वारा नियुक्त घरेलू कर्मचारी, 1.5% निर्माण एवं 2% यातायात एवं संचार में कार्यरत हैं। असंगठित श्रमिकों की इन विभिन्न सेक्टरों की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। रोमन का नंबर 1, असंगठित सेक्टर में श्रमिकों की आय संगठित सेक्टर में उनके साथियों की तुलना में न केवल सापेक्षतया कम है, अपितु अनेक बार तो इतनी कम होती है कि वे जीवन स्तर के न्यूनतम निर्वाह योग्य भी नहीं होती। कुछ मामलों यथा कृषि एवं निर्माण में सारा वर्ष रोजगार न मिलने के कारण संपूर्ण आय और भी अधिक कम हो जाती है। रोमन का नंबर 3, उन्हें काम की सुरक्षा प्राप्त नहीं होती क्योंकि उनके रोजगार का स्वरूप अस्थायी है, जैसा कृषि एवं निर्माण में है। यद्यपि वे निर्माण एवं सेवाओं संबंधी रोजगारों में अधिकांश समय तक कार्यरत रहते हैं, परंतु नियोक्ता द्वारा उन्हें किसी भी समय निकाला जा सकता है। रोमन का नंबर 3, वे सरकार द्वारा प्रदत्त सामान्य कल्याण संबंधी कुछ सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते। उदाहरण तथा नगर के सुमेशित क्षेत्र में आवास ना पा सकने के कारण वे सार्वजनिक सुविधाओं यथा सड़कों, बिजली, पेयजल, स्कूल एवं अस्पताल सेवा का लाभ नहीं उठा सकते एवं उठा सकते उन्हें सहायता प्रदत्त आवास स्कीमों का लाभ भी उपलब्ध नहीं होता। पृष्ठ संख्या 567, रोमन का नंबर 4, वे अपने वेतन तथा कार्य दशाओं को सुरक्षित करने हेतु संघों में संगठित नहीं होते, अतएव उन्हें श्रम बाजार के उतार चढ़ाव पर आश्रित रहना पड़ता है, जो सामान्यतया उनके विपरीत चलता है। वे श्रम संबंधी अधिनियमों को प्रशासित नहीं होते क्योंकि ऐसे अधिनियम उन प्रतिष्ठानों जहां वे कार्यरत हैं पर लागू नहीं होते, अतएव उनके वेतन एवं कार्य दशा सुरक्षित नहीं होती एवं उन्हें चिकित्सा देखभाल, दुर्घटना प्रतिपूर्ति लाभांश, वेतन सहित अवकाश एवं सेवानिवृत्ति लाभों का लाभ प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार असंगठित अनेक गंभीर हानियों से पीड़ित हैं। यद्यपि सरकार उनके लिए कल्याण उपायों की व्यवस्था करने हेतु चिंतित है, परंतु इन उपायों को क्रियान्वित करने में मुख्यतः प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण ऐसा नहीं कर पा सकी है। प्रथमतया असंगठित श्रमिकों की संख्या इतनी विशाल एवं विभिन्न श्रेणियों की है कि इसकी प्रबंध स्थिति में नहीं, जिसका परिणाम इन श्रमिकों की सेवा से छुट्टी हो सकती है। तृतीय, कुछ एक कल्याणकारी उपाय जो अंशदायी हैं यथा अंशदायी बीमा योजना, भविष्य निधि योजना आदि के प्रशासन में कठिनाई होगी क्योंकि कुछ कार्य आकस्मिक हैं, जैसे कृषि एवं निर्माण कार्य। इन कठिनाइयों की वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता, तदपि असंगठित श्रमिकों को एक से अधिक ढंग से कम कुछ नियमित उद्योगों में सहायता प्रदान की जा सकती है। निर्माण उद्योग अपनी पूंजी पर लाभ अर्जित करता है, अतः यह श्रम कल्याण उपायों का व्यय वहन करने की स्थिति में है। दूसरे, यदि अंशदान पर आधारित बीमा स्कीम तथा अन्य कल्याणकारी स्कीमों को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, क्योंकि नियोक्ता एवं कर्मचारी में अंशदान का सामर्थ्य नहीं होता, तदपि कल्याण स्कीमों को सामाजिक सहायता के सिद्धांत पर क्रियान्वित किया जा सकता है, जैसा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए सामान्यतया किया जा रहा है। श्रमिकों को एक अलग वर्ग समझकर उन्हें सहायता दी जा सकती है। तीसरे, यद्यपि असंगठित श्रमिकों को लाभांश, सेवानिवृत्त लाभों यथा पदच्युति प्रतिपूर्ति के लाभ नहीं दिए जा सकते, तद्यपि इन्हें आवास की सुविधाएं तथा बेरोजगारी भत्तों का लाभ दिया जा सकता है। अंतिम, अनेक श्रमिक कुछ प्रतिष्ठानों यथा निर्माण, व्यापार, वाणिज्य एवं सेवा प्रतिष्ठानों में एक ही नियोक्ता के अधीन दीर्घकाल तक कार्य करते हैं। अंशदान बीमा नियम पर आधारित कल्याण उपायों को क्रियान्वित किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि कल्याण बीमा सामाजिक सहायता के आधार पर असंगठित श्रम में कुछ एक सेक्टरों में कल्याणकारी उपायों को एक अलग प्रशासकीय संरचना द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों श्रमिकों को इस शोषित भाग के कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करने हेतु वचनबद्ध हैं तथा कुछ एक उपाय जैसा निम्न वर्णित है आरंभ भी कर दिए गए हैं।